अध्याय 53 हृदय और जीवन की पवित्रता। परमेश्वर ने आपको देखरेख के लिए एक घर अपनी सेवा और महिमा के लिए सुंदर दशा में रखने को दिया है। आपकी देह आपकी निजी नहीं है। क्या तुम नहीं जानते हो कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? क्या तुम नहीं जानते हो कि तुम ईश्वर के मंदिर हो और ईश्वर का आत्मा तुम में बसता है? यदि कोई मनुष्य ईश्वर के मंदिर को नाश करे तो ईश्वर उसको नाश करेगा, क्योंकि ईश्वर का मंदिर पवित्र है और वो मंदिर तुम हो। इस भ्रष्टाचार के युग में जब हमारा बैरी शैतान गर्जते हुए सिंह की नाई ढूंढता फिरता है कि किसको निगल जाए, तो मैं अपनी चेतावनी की ये आवाज ऊंची करने को महसूस करती हूं। मरकुस 14:38। बहुत से हैं जो प्रतिभा संपन्न हैं, पर वे उस योग्यता को शैतान की सेवा में दुष्टता के कार्यों में खर्च करते हैं। मैं ऐसे लोगों को क्या चेतावनी दूं जो दावा करते हैं कि वे दुनिया से निकल आए हैं और जिन्होंने अंधकार के सारे काम त्याग दिए हैं? ऐसे लोगों को जिन्हें परमेश्वर ने अपनी व्यवस्था का भंडारी बनाया है, परंतु जो दिखावटी अंजीर के पेड़ की भांति प्रत्यक्ष में अपनी लहलहाती डालियों की तड़क भड़क को सर्वशक्तिमान के ऐन मुंह के सामने दिखलाते हैं, परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए फल नहीं लाते। उनमें से बहुत से अशुद्ध विचारों, अपवित्र कल्पना शक्तियों, अशुद्ध इच्छाओं तथा नीच अभिलाषाओं का पोषण करते हैं। परमेश्वर ऐसे वृक्ष पर लगे फलों से घृणा करता है। पवित्र स्वर्गदूत ऐसों की चाल को घृणा की दृष्टि से देखते हैं, परंतु शैतान प्रसन्न होता है। ऐसा होता कि पुरुष व स्त्री इस बात पर सोच विचार करते कि परमेश्वर की व्यवस्था के उल्लंघन से क्या लाभ मिल सकता है। हर हालत में अनाज्ञाकारिता परमेश्वर के लिए निरादर तथा मनुष्य के लिए अभिशाप का कारण है। हमको उसे इसी प्रकार समझना चाहिए। उसका वेश कितना ही सुंदर क्यों न हो, और चाहे जिस किसी ने उसका उल्लंघन क्यों न किया है, जिनके मन शुद्ध हैं वे परमेश्वर को देखेंगे। प्रत्येक अशुद्ध विचार आत्मा को अपवित्र करता है, नैतिक ज्ञान को क्षति पहुंचाता है, नैतिक ज्ञान को क्षति पहुंचाता है और पवित्र आत्मा के प्रभाव को निर्मूल करता है। इससे आध्यात्मिक दृष्टि धुंधली पड़ जाती है, जिससे मनुष्य परमेश्वर को नहीं देख सकता। परमेश्वर पश्चातापी पापी को क्षमा करता तथा कर सकता है, पर यद्यपि क्षमा तो मिल जाती है तथापि आत्मा को हानि होती है। जो आत्मिक सत्य का स्पष्ट ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, उसको अशुद्ध वाणी या विचार को त्यागना चाहिए। कुछ लोग अधर्म के कामों में रत रहने की बुराई को मान लेते हैं, तो भी अपने को यह कहकर छूट देते हैं कि वे अपनी कामनाओं पर जय प्राप्त नहीं कर सकते। किसी भी व्यक्ति के लिए जो मसीह का नाम लेता है, ऐसा इकरार करना बहुत ही खतरनाक है, और जो उसका नाम लेता है वो अधर्म से बचा रहे। 2 तिमुथियुस 2:19। ये कमजोरी क्यों है? इसका कारण यह है कि पाश्विक प्रवृत्तियों को अभ्यास द्वारा बल मिलता रहा, यहां तक कि उच्च प्रवृत्तियों के ऊपर उन्होंने अपना प्रभुत्व जमा लिया है। पुरुष व स्त्रियों में नियम की त्रुटि पाई जाती है। आत्मिक दृष्टि से वे भर रहे हैं, क्योंकि वे इतनी देर से अपनी स्वाभाविक क्षुधाओं को तृप्त करते रहे हैं, इसलिए उनकी आत्मा शासन की शक्ति जाती रही। उनको प्रकृति की पतित अभिलाषाओं के हाथ में बागडोर आ गई। जिसे शासनकर्ता होना चाहिए था, वो भ्रष्ट कामनाओं का दास बन गया है। आत्मा नीच दासत्व में पड़ गई है। भोग विलासिता ने पवित्रता की इच्छा को बुझा दिया है और आत्मिक समृद्धशाली को क्षीण कर दिया है। परमेश्वर के मंदिर को नाश न कीजिए। इन अंतिम दिनों में शैतान का विशेष काम है कि युवकों व युवतियों के मन पर अधिकार जमावे, विचारों को भ्रष्ट करे तथा इच्छाओं को भड़कावे, क्योंकि वो जानता है कि ऐसा करने से वो उनकी अशुद्ध कार्यों को और अगुवाई कर सकता है, और यूं समस्त मस्तिष्क की सारी उच्च शक्तियां बिगड़ जाएंगी। तब वो अपना उल्लू सीधा करने के लिए उन पर नियंत्रण कर सकता है। मेरी आत्मा उन जवानों की ओर से जो इस अधर्म युग में अपना चरित्र बना रहे हैं शोकित है। मैं उनके माता पिता के लिए भी कांपती हूं, क्योंकि मुझे बतलाया गया है कि आम तौर पर वे बच्चों को जिस मार्ग में उन्हें चलना है उसकी ओर प्रशिक्षण करने का दायित्व नहीं समझते हैं। दस्तूर तथा फैशन की पूछ होती है और बालक शीघ्र ही इनसे प्रभावित होकर भ्रष्ट हो जाते हैं, जबकि उनके व्यसनी माता पिता स्वयं चेतना शून्य तथा खतरे की ओर से सोए हुए हैं। परंतु थोड़े से ही युवक भ्रष्ट आदतों से बचे हुए हैं। अत्यधिक काम करने के डर से उन्हें किसी हद तक शारीरिक व्यायाम से छुट्टी मिल जाती है। जिस भार को बालकों को उठाना चाहिए उसे माता पिता को स्वयं उठाना पड़ता है। अत्यधिक काम अच्छा नहीं है, परंतु आलस्य के परिणामों से और भी अधिक भय खाना चाहिए। आलस्य ही भ्रष्ट आदतों की व्यसन की ओर अगुवाई करता है। परिश्रम से कोई थकावट नहीं होती और उसका पांचवा भाग भी नष्ट नहीं होता, जितनी हस्तमैथुन की घृणित आदत से होता है। यदि साधारण सुव्यवस्थित परिश्रम से आपके बालकों को थकावट लगती है तो निश्चय जानिए माता पिताओं कि उनके परिश्रम के अलावा कोई चीज है जिससे उनको शरीर रचना क्षीण हो रही और निरंतर थकावट की भावना पैदा हो रही है। अपने बालकों को ऐसा शारीरिक काम दें जिससे स्नायु तथा मांसपेशियों को व्यायाम मिले। इस प्रकार के परिश्रम के परिणाम स्वरूप थकावट से पतित आदतों में रत रहने की इच्छा घट जाएगी। ऐसी वस्तुओं को देखना तथा पुस्तकों को पढ़ना छोड़ दीजिए जिनसे मंदे विचारों को प्रोत्साहन मिले। नैतिक तथा मानसिक शक्तियों का उपार्जन कीजिए। परमेश्वर आपसे यही मांग नहीं करता कि अपने विचारों पर ही नियंत्रण रखिए, अपितु अपनी इच्छाओं तथा प्रेम पर भी। आपका मोक्ष इन्हीं बातों को अधिकार में रखने के ऊपर निर्भर है। लालसा और प्रेम दो शक्तिशाली साधन हैं। यदि गलत रूप में प्रयोग में लाए जाएं, यदि गलत विचार से कार्यान्वित किए जाएं, यदि गलत जगह पर रखे जाएं, तो वे आपका सत्यनाश करने को भी वैसे ही शक्तिशाली हैं और आपको एक अभागा अद्भुगी बना के छोड़ देंगे, जिसको न कोई परमेश्वर है न कोई आशा। यदि आप मिथ्या विचारों में रत रहेंगे और अपने मन को अशुद्ध विचारों में लगाए रहेंगे तो आप एक हद तक परमेश्वर के सामने इतना ही दोषी हैं जैसे मानो कि आपके विचार सचमुच में व्यवहार में आए हैं। जो बात इस कार्यवाही को रोक रही है वह यह है कि अवसर साथ नहीं दे रहा है। दिन रात स्वप्न देखना तथा हवा में महल बनाना आदि अत्यधिक खतरनाक आदतें हैं। एक बार यह बन जाएं तो ऐसी आदतों को तोड़ना और विचारों को शुद्ध, पवित्र, उच्च विषयों की ओर फेरना अत्यंत असंभव है। यदि आप अपनी विचारधारा को काबू में रखना चाहते हैं और व्यर्थ, भ्रष्ट विचारों द्वारा अपनी आत्मा को दूषित होने से बचाना चाहते हैं, तो आपको अपनी आंख, कान तथा समस्त ज्ञान इंद्रियों पर विश्वस्त संतरी सा बनना होगा। अनुग्रह की शक्ति ही इस वांछनीय कार्य को सफल कर सकती है। अत्यधिक अध्ययन के फलस्वरूप दिमाग की ओर रक्त की गति बढ़ने से दूषित उत्तेजना उत्पन्न होती है, जिससे आत्मनियंत्रण की शक्ति निर्बल हो जाती है और अवसर प्रवृत्ति अथवा तरंग को प्रभुत्व प्राप्त होती है। इस प्रकार अपवित्रता का द्वार खुल जाता है। शारीरिक शक्तियों का अनुचित उपयोग अथवा उपयोग न करना संसार पर छाई हुई भ्रष्टता के लिए उत्तरदायी है। घमंड करती, पेट भर के खाती, सुख चैन आलस्य से रहती। घमंड, पेट भर के रोटी तथा अत्यधिक आलस्य, इस पीढ़ी में मानव उन्नति के ऐसे घातक शत्रु हैं जिस प्रकार वे सदोम के सर्वनाश का कारण हुए थे। नीच इच्छाओं में लिप्त से बहुतों की आंखें प्रकाश की ओर से बंद हो जाएं, क्योंकि वे डरते हैं कि कहीं उन पापों को न देख लें जिन्हें वे छोड़ने को राजी नहीं हैं। यदि सब चाहें तो देख सकते हैं, यदि वे प्रकाश की अपेक्षा अंधियारे को चुने तो उनका अपराध कुछ कम न होगा। प्रत्येक मसीही का नियम ये होना चाहिए कि परमेश्वर की व्यवस्था के उल्लंघन तथा निरादर करने से भला यही है कि मृत्यु हो जाए। मंडली के रूप में धर्म सुधारक होने का दावा करते हुए परमेश्वर के वचन के अति गंभीर तथा शुद्धकारी सत्यों को रखकर हमें सत्य के स्तर को जितना वर्तमान में वो है उससे कहीं ऊंचा करना चाहिए। मंडली में पाप और पापियों के साथ तुरंत तदनुसार बर्ताव करना चाहिए ताकि दूसरे भी भ्रष्ट न हों। सत्य और शुद्धि यही मांग करते हैं कि आकान जैसे व्यक्तियों से छावनी शुद्ध की जाए। जो जिम्मेदारी की जगह में है उन्हें भाई के पाप की बर्दाश्त न करनी चाहिए। उसको दिखलाइए कि या तो वो अपने में से पाप अलग करे अथवा कलीसिया से अलग हो जाए। युवक, सिद्धांतों के ऐसे पक्के पाबंद हों कि शैतान का जबरदस्त प्रलोभन भी उन्हें आज्ञाकारिता से न हटा सके। शमूएल ऐसा बालक था जो बहुत कलुषित प्रभावों से घिरा हुआ था। उसने ऐसी बातें देखीं और सुनी जिनसे उसकी आत्मा को बड़ा दुख हुआ। एली के पुत्र जो पवित्र पद पर सेवा कार्य करते थे शैतान के नियंत्रण में रहते थे। इन पुरुषों ने अपने चारों ओर के वायुमंडल को दूषित कर दिया था। स्त्री पुरुष दिन प्रतिदिन पाप तथा बुराई से आकर्षित होते थे, तो भी शमूएल की चाल निर्दोष थी। उसके चरित्र का वस्त्र निष्कलंक था। उसने इसराइलियों के भयानक पापों की खबरों में कोई भाग न लिया, न प्रसन्नता ही प्रकट की। शमूएल परमेश्वर से प्रेम करता था। वो अपनी आत्मा को स्वर्ग के ऐसे निकट संपर्क में रखता था कि एली के पुत्रों के पापों के विषय में, जो इसराइल भ्रष्ट कर रहे थे, एक स्वर्गदूत उससे बात करने को भेजा गया। नैतिक भ्रष्टता का परिणाम। कुछ लोग जो धार्मिकता का बड़ा दावा करते हैं, हस्तमैथुन के अपराध और उसके परिणामों को नहीं समझते हैं। देर से पड़ी आदत ने उनकी समझ को अंधा कर दिया। वे इस पतित पाप के अत्यधिक अधर्म को महसूस नहीं करते जो शरीर रचना को हानि तथा दिमाग की स्नायु शक्ति को नाश कर रहा है। जब नैतिक सिद्धांत किसी स्थापित आदत के साथ संघर्ष करता है तो वो हृदय अधिक कमजोर प्रतीत होता है। गंभीर संदेश। उस हृदय पर जिसकी इस कुकर्म के विरुद्ध सुरक्षा नहीं हुई है, जबरदस्ती से प्रभाव नहीं डाल सकते। भोग विलास की अस्वाभाविक इच्छा को संतुष्ट करने की अस्वस्थ उत्तेजना के कारण मस्तिष्क की शीघ्रगाही नाड़ियां अपनी स्वस्थ स्थिति को खो डालती हैं। नैतिक भ्रष्टता हस्तमैथुन ने अन्य बुराइयों की अपेक्षा जाति को अधिक क्षति पहुंचाई है। इस आदत को इस बेहद रीति से व्यवहार में लाया जाता है कि हम भयभीत होते हैं, क्योंकि इससे हर प्रकार की बीमारी पैदा होती है। माता पिता आम तौर से इस बात का संदेह नहीं करते कि उनके बालक इस दुराचार के बारे में कुछ समझते हैं। अनेक परिस्थितियों में माता पिता ही अपराधी होते हैं। उन्होंने वैवाहिक विशेषाधिकारों को भंग किया है और इस लत के द्वारा अपनी निर्बल होती गईं। पार्श्विक शक्ति ने आध्यात्मिक शक्ति को पराजित कर दिया। बच्चे विकासित पार्श्विक प्रवृत्ति के साथ पैदा होते हैं और माता पिता के चरित्र की छाप उन पर लगी हुई होती है। इन माता पिता से उत्पन्न बालक भी इस स्वभावतः घिनौने गुप्त पाप के आदि हो जाते हैं। माता पिता के पापों का दंड उनके बालकों को उठाना होगा, क्योंकि माता पिता ने उन्हें अपनी कामुक प्रवृत्ति की छाप दी है। जो लोग इस आत्मा और देह को नष्ट करने वाले पाप में पूर्ण रीति से अभ्यस्त हो जाते हैं, वे मुश्किल से आराम कर सकते हैं, जब तक वे गुप्त अपराध का भार अपने साथियों पर न डाल दे। जिज्ञासु की भावना जाग उठती और इस पाप का ज्ञान एक युवक से दूसरे तक और एक बालक से दूसरे तक पहुंचाया जाता है। मुश्किल ही से शायद कोई रह जाता हो जो इस पतित अपराध की आदत से अनजान रहे। गुप्त आदतों का अभ्यास शरीर रचना की मार्मिक शक्तियों को अवश्य ही नष्ट कर डालता है। सारी अनावश्यक कार्यवाही के बाद ही पतन शुरू हो जाता है। बालकों की मार्मिक राजधानी मस्तिष्क पर आरंभिक अवस्था ही से ऐसा भार पड़ जाता है कि बड़ी कमी और थकावट महसूस की जाती है, जिससे सारी देह विभिन्न प्रकार के रोगों के जोखिम में पड़ जाती है।
यदि यह लत 15 वर्ष की आयु के ऊपर से जारी हो तो प्रकृति दुरुपयोग के कारण जो दुख उठाया जा उठा नहीं है उसके प्रति प्रतिरोध करेगी और उनसे उसके नियमों का खंडन करने के लिए दंड भरवाएगी। विशेषकर 30 वर्ष की आयु से लेकर 45 वर्ष तक देह का नाना प्रकार के दर्द तथा रोग, जैसे यकृत और फेफड़ों की खराबी, आधा सीसी का दर्द, गंठिया रोग, रीढ़ के दर्द, रोगग्रस्त गुर्दे नासूर आदि हो जाएंगे। प्रकृति की सुंदर यंत्रकला के कुछ पुर्जे टूट फूट जाते हैं और शेष अंशों के लिए कठिन कार्य छोड़ जाते हैं, जिससे प्रकृति की सुंदर व्यवस्था अव्यवस्थित हो जाती है और अक्सर शरीर गठन में तुरंत अस्वस्थता आ जाती है और परिणाम मृत्यु होती है। स्वर्ग की दृष्टि में शरीर को क्रमशः पर निश्चित रूप में मार डालना इतना ही भारी काम है जितना एक झटके से आत्मा त्याग करना। जो लोग दुराचार के कारण अपने ऊपर निश्चित बर्बादी लाते हैं, यदि वे दिल से पश्चाताप न करें तो वो यहां भी दंड भोगेगा और भविष्य में एक झटके में आत्महत्या करने वाले की तरह
उसके लिए स्वर्ग में प्रवेश करने का कोई अवसर न होगा। सब कमजोर बालक बुरी आदतों के दोषी ठहराए जाने से सम्मिलित नहीं किए जा सकते। शुद्ध हृदय और अंतःकरण वाले कुछ ऐसे हैं जो विभिन्न कारणों से रोगग्रस्त होते हैं और जिन पर उनका कोई नियंत्रण नहीं होता। गुप्त पाप, उच्च प्रस्ताव, सच्ची कोशिश तथा इच्छा की शक्ति को जो एक सुंदर धार्मिक चरित्र का निर्माण करते हैं, नष्ट कर देता है। जिनको मसीही होने के नियमों का सच्चा अर्थ मालूम है और यह जानते हैं कि मसीही के शिष्य इस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होते हैं कि अपनी इच्छाओं, अपनी शारीरिक तथा मानसिक शक्तियों को उस परमेश्वर की इच्छा के अधीन रखें। जो अपनी इच्छाओं के वश में हैं, वे मसीह के शिष्य नहीं बन सकते। हर बुराई के आविष्कारक अपने सरदार की सेवा में इतने संलग्न हैं कि अपनी भ्रष्ट आदतों को छोड़कर मसीह की सेवा को चुन नहीं सकते। जब बालक कुमारावस्था में बुरी आदत को धारण कर लेते हैं तो वे कभी ऐसी शक्ति प्राप्त नहीं कर पाएंगे जिससे सही रीति से शारीरिक, मानसिक तथा नैतिक चरित्र का पूर्णतः विकास हो सके। जो बुरी आदतों को अभ्यास करते हैं उनके लिए एकमात्र आशा यही है कि सदा के लिए उन्हें त्याग दें। यदि वे स्वास्थ्य का वर्तमान में और मुक्ति का भविष्य में कुछ मूल्य समझें। जब कोई अधिक समय तक इन आदतों में लिप्त रहता है तो प्रलोभन का मुकाबला करने तथा भ्रष्ट व्यसन का इनकार करने के लिए जबरदस्त कोशिश की जरूरत पड़ती है। हमारे बालकों के लिए गंदी आदतों के प्रति निश्चित सुरक्षा ये है कि वे मसीह के झुंड में प्रवेश करने की चेष्टा करें और सच्चे गड़रिये की देखरेख में आवें। यदि वे उसकी आवाज पर ध्यान देंगे तो वो उनको हर एक बुराई से बचाकर सारे जोखिमों से सुरक्षित रखेगा। वो कहता है, मेरी भेड़े मेरा शब्द सुनती हैं और पीछे पीछे हो लेती हैं। मसीह में उनको चारा मिलेगा, शक्ति व आशा प्राप्त होगी और मन को अन्य दिशा में रफरने और हृदय को संतुष्ट करने की खातिर व्याकुल करने वाली इच्छाएं घबराहट में न डालेंगी। उनको बहुमूल्य मोती मिल गया है, इसलिए उनके मन में शांति है। उनके आमोद प्रमोद के साधन शुद्ध, शांतिमय, उच्च कोटि के तथा स्वर्गीय प्रकृति के होते हैं। उनका कोई दुखदायी प्रभाव तथा कोई पश्चाताप की भावना पीछे नहीं छूटती। ऐसा आमोद प्रमोद स्वास्थ्य को नहीं बिगाड़ता, न मस्तिष्क को निर्बल करता।